आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों में नई जान फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को द्वीपीय राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने दो दिन के दौरे में उन्होंने राष्ट्रपति मुइज्जू के अलावा मालदीव के प्रमुख नेताओं, उपराष्ट्रपति उज हुसैन मोहम्मद, पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति नशीद से भी मुलाकात की। भारत ने मालदीव के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए 4,850 करोड़ रुपए की नई ऋण सहायता की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी के भारत रवाना होते ही राष्ट्रपति मुइज्जू ने इसे एक निर्णायक यात्रा बताते हुए कहा कि यह मालदीव और भारत के संबंधों के भविष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा नवंबर 2023 में राष्ट्रपति मुइज्जू के चुनाव के बाद से गंभीर तनाव में आए संबंधों में सुधार के एक बड़े प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। अपनी व्यस्त विदेश यात्रा के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दो दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे, जहां सन 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुत्तीकोड़ी में 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में 3,00,000 करोड़ रुपए की राशि तमिलनाडु को दिए जाने की बात कही। रविवार को वो चोल साम्राज्य के बनाए प्रसिद्ध गंगई कोड्डा चोल्लापुरम मंदिर गए। वहां आदि थिरुवथराई महोत्सव में दिए अपने संबोधन में उन्होंने चोल साम्राज्य के विख्यात राजाओं की भरपूर प्रशंसा की।
साथियों, चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, पोटेंशियल का उद्घोष है।
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने सोशल मीडिया पर एक गाने के माध्यम से प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक तमिलनाडु को केंद्र सरकार से 2,63,000 करोड़ रुपए का बकाया और राज्यों को दिए जाने वाला अंशदान तक नहीं मिला है। केंद्र की भाजपा सरकार तुत्तीकोड़ी में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए भी आपदा राहत राशि न देकर धोखा कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को ले उपजा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के शपथ पत्र के जवाब में तर्क दिया है कि बिहार के मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने का संवैधानिक अधिकार होने का चुनाव आयोग का दावा पिछले सभी फैसलों के विपरीत है। ADR ने स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार और राशन कार्ड को बाहर रखने को बेहद बेतुका बताया और कहा कि पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास के दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय आधार व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग यह बताने में विफल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुनरीक्षण प्रक्रिया को जल्दबाजी में क्यों किया जाना चाहिए और जिस तरह से इसे अंजाम दिया जा रहा है वह राज्य के मतदाताओं के साथ घोर धोखाधड़ी है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से एक दिन पहले रविवार को घोषणा की कि उसने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक आधिकारिक बयान में चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली आगामी मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं को बाहर रखा जाएगा। इन बहिष्कृत मतदाताओं में 22 लाख मृत मतदाता, 36 लाख मतदाता जो या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या जिनका पता नहीं चल पा रहा है और 7 लाख मतदाता जो कई स्थानों पर पंजीकृत थे शामिल हैं। चुनाव आयोग अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक विशेष नामांकन अभियान शुरू करेगा जिसमें 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 1 अगस्त को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होने वाली मसौदा सूची 1 महीने तक दावों और आपत्तियों के लिए खुली रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों में आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या के मामले में सुनवाई करते हुए इसे सिस्टम की नाकामी बताते हुए कहा कि इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट में बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 में देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्याएं की जिनमें से 13,044 छात्र थे। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2,248 छात्रों ने सिर्फ इसलिए जान दी क्योंकि वे परीक्षा में फेल हो गए थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूरे देश के लिए 15 अहम दिशा निर्देश जारी किए जिनका मकसद छात्रों की मानसिक स्थिति को सुधारना और आत्महत्या की घटनाओं को रोकना है। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार से 90 दिनों के भीतर हलफनामा जारी करने को कहा जिसमें बताया जाए कि छात्रों की मानसिक परेशानियों पर काम कर रही नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सुझाव कब तक पूरे किए जाएंगे। और अब समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम कड़ा संघर्ष करते हुए लगभग निश्चित हार को टाल मैच को ड्रॉ करने में सफल रही। पहली पारी में इंग्लैंड से 311 रन से पिछड़ने के बावजूद दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने गजब की दृढ़ता दिखाई। शून्य पर 2 बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और के सुदर्शन के आउट हो जाने के बाद KL राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 188 रनों की साझेदारी की। राहुल 230 गेंदों पर 90 रन बना कप्तान स्टोक्स द्वारा आउट किए गए। उसके कुछ ही देर बाद गिल भी 103 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जेमी स्मिथ द्वारा लपके गए। तब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 222 रन था और वह पारी की हार को टालने से 89 रन दूर था। लेकिन इंग्लैंड की तमाम कोशिशों के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने गजब का संघर्ष करते हुए दोनों छोर संभाले रखे। सुंदर 206 गेंदों पर 101 रन बना नाबाद रहे। जडेजा ने भी अपनी आक्रामकता पर लगाम कसते हुए 185 गेंदों में 107 रनों की नाबाद पारी खेली। बेन स्टोक्स को भारत की पहली पारी में 5 विकेट लेने और सैकड़ा बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
Yeah.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।